इस बात का विचार करके पाएंगे कि हमारी अपनी जीवन की जो वास्तविकता है वो क्या है, तभी शायद हम अपने आप को देख पाएंगे। नो दाई सेल्फ, उन्हीं क्षणों में शायद हम अपने आप को देखना शुरू करेंगे, जहां हम अच्छे हैं, जहां हम बुरे हैं, दोनों स्थितियों को हम अपने ही संदर्भ में देखेंगे। अभी तक तो हमारी आदत थी कि हम दूसरे के संदर्भ में अपने जीवन का मूल्यांकन करते थे, लेकिन अब तो हमने अपने जीवन का मूल्यांकन अपने ही संदर्भ में करना शुरू किया है। इस सुबह जो मेरे परिणाम थे दोपहर और शाम को, उनसे बेहतर हुए हैं या नहीं हुए। अभी तो मैं ये देखता था कि अच्छाइयों में मैं औरों से ज्यादा अच्छा हूं और बुराइयों में मैं औरों से कम बुरा हूं, और इस तरह मैं अपनी अच्छाइयों के प्रति अहंकार करने लगता था और अपनी बुराइयों के प्रति मैं बिल्कुल गाफिल होकर के कि मेरे अंदर तो बहुत कम बुराइयां हैं, ऐसा सोच करके मैं उन बुराइयों को भी हटाने की कोशिश नहीं करके उनमें ही संतुष्ट होकर के बैठ जाया करता था। लेकिन नहीं, अब मैंने अपने को देखना शुरू कर दिया है। अब मैं अपनी योग्यता को स्वयं मूल्यांकित कर रहा हूं कि मेरी योग्यता रोज रोज बढ़नी चाहिए। कल यदि क्रोध के 100 अवसर में से मैं 99 तक चूक गया था, एक अवसर पर जरूर मैं सफल रहा था, कल झूठ बोलने के 100 अवसर में से 99 अवसर पर मैं चूक गया था, सिर्फ एक अवसर पर मैंने सच कहा था, लेकिन आज तो मेरे जीवन में क्रोध के बहुत सारे अवसर आए और मैं नहीं चूका, मैंने उसमें क्षमा भाव धारण किया है। मैंने झूठ के अवसर आने पर भी अपनी सच्चाई को जाने नहीं दिया है। मैंने अपनी दरिद्रता को तमाम कठोरताओं के बावजूद भी बरकरार रखा है। अगर इस तरह हमने अपने को देखना अपने संदर्भ में शुरू कर दिया, तो फिर हमें मालूम पड़ने लगता है कि हमारी क्षमताओं को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। आज सभी लोग अपनी क्षमता बढ़ाना चाहते हैं। आज जो प्रोडक्शन करते हैं वे अपनी फैक्ट्री की क्षमता बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने व्यापार की क्षमता बढ़ाने की कोशिश करते हैं, सब अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। तब क्यों हमें अपने उस आत्मा की अनंत क्षमता को जो कि सोई हुई है उसको मैं बढ़ाऊं, उसको बढ़ाऊं, उसके मायने से कितना ही है कि मैं उसको जागृत करूं और अपनी उस क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाने का अभ्यास करूं। और क्षमता बढ़ती है विपरीतताओं में क्षमता धारण करने, जबकि कला ईर्षा और विद्वेष की दुष्प्रवृत्तियां मेरे भीतर जोर मारती हैं, तब मैं बहुत कमजोर हो जाता हूं। अब मुझे अपनी क्षमता बढ़ानी है। जब कला ईर्षा और द्वेष की प्रवृत्ति मेरे भीतर जागृत हो, तो मैं सावधानी से उसको हटाने के लिए, और जैसे कि कोई सैनिक तैयार रहता है कि कोई विदेशी आक्रमण न हो, ये सारी मेरे भीतर जो विदेशी ताकतें हैं, ये जो फॉरेन मटीरियल है, ये जो मेरे अपने भीतर वैश्विक विकृतियां हैं, वो सब मेरी नहीं है, वो सब विदेशी है, मेरी अपनी निजी नहीं है। और ये जब मेरी निजी नहीं है तो मुझे क्यों प्रभावित करते हैं, मैं इनसे प्रभावित नहीं हूं। इस तरह हम अपनी क्षमताओं को अब प्रभावित इन चीजों से बना करके बढ़ा सकते हैं। आज हम छोटी छोटी चीजों से प्रभावित हो गए, क्या इसी को हम क्षमता मानेंगे? हम लोभ से प्रभावित हो, हम माया से और मान से और क्रोध से प्रभावित होकर के और उन्हीं प्रवृत्तियों को करने लगते हैं, इसके मायने हैं कि हम बहुत कमजोर। इन तमाम चीजों के बीच भी अपनी क्षमता को बढ़ा सकें, और फिर जैसे जैसे हमारा ये प्रयोग हमारा ये अभ्यास बढ़ता चला जाएगा, हम देखेंगे कि हमारी लिमिटेशंस क्या है, हमारी अपनी बुराइयों की लिमिटेशंस है, क्रोध हम कितनी देर कर सकते हैं। 48 मिनट मैक्सिमम आचार्य भगवंतों ने लिखा हुआ है, उसका काल अंतर्मुहूर्त ही है, फिर हम उसको कंटिन्यू करते हैं, ये हमारी अपनी कमजोरी है। जो हमारी विकृतियों की सीमा है, तो हम उस सीमा को क्यों नहीं पहचानते, और उस सीमा को क्यों नहीं घटाना पसंद करेगा। अपनी क्षमताओं को बढ़ाना और अपने भीतर जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उनकी उनकी क्षमता को कम करते चले जाना, उनकी सीमा को पहचान करके ही हम कम कर सकते हैं। हम तो आकलन कर चुके हैं कि शायद मेरे भीतर विकृतियों का साम्राज्य बहुत समृद्ध है, बहुत सशक्त है। नहीं, हमने पहचान लिया है कि विकृतियां बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए है और बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, क्योंकि क्रिएशन इज नॉट मोर देन क्रिएटर। कभी भी कोई कृति कलाकार से बड़ी नहीं हो सकती। ये जो कुछ भी मेरे भीतर विकृतियां हैं वो मेरी ही निजात की गई है, ये मेरे से बड़ी नहीं। मैं इनको डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, मैं इनको नष्ट कर सकता हूं। ये मेरे भीतर इस तरह का भाव उत्पन्न होना चाहिए। और कल हमने ये समझा था कि मेरे भीतर बहुत सी ऐसी आदतें हैं जिनके चलते मैं बुराइयों को सपोर्ट करता हूं और सच्चाई का सम्मान नहीं कर पाता हूं। ये मेरी हैबिट बन गई। और जब कोई बहुत गहरी आदत हो जाए तो वो फिर हमारे स्वभाव में परिवर्तित हो जाए। हमने शायद पिछले दिनों भी ये कहा था कि हैबिट इज द सेकंड नेचर। हमारा एक तरह का स्वभाव बन जाती है हमारी अपनी आदत, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। और हम देखते हैं कि हमारे भीतर की बुरी आदतों को हम निकालना चाहते हैं लेकिन निकाल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं है। हम अपने भीतर की बुरी आदतों को तभी बदल सकते हैं जबकि हम पहले अपने आप को कहीं एकाग्र करें किसी चीज पर, और फिर हमें शायद एकाग्रता के बाद ज्यादा प्रयत्न करना ही पड़ेगा। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत एकाग्र होकर के किसी चीज को तोड़ना चाहे और यहां वहां सब जगह उसका कोई कंसंट्रेशन नहीं है तो वो किसी चीज को ब्रेक नहीं कर सकता। दीपक की लो, उसके ऊपर हाथ रखिएगा, हवा चल रही हो तो जलने के कोई चांसेस नहीं। अगर जगमगाती हो दीपक की लो तो हवाओं में, और अगर वही दीपक की लो उसके हो तो फिर जरा उस पर हाथ रखे देखिएगा, वो जला देगी। ठीक ऐसे ही जैसे ही हमारे मन वचनकाय की जो प्रवृत्ति है वो कंसंट्रेट हो जाती है, मन वचनकाय एकाग्र हो जाते हैं, उससे फिर हमारे दशाएं की हवाएं प्रकंपित नहीं कर पाती हैं। उन मन वचनकाय के प्रकंपन को हम धीरे धीरे करके सबसाइड करते जाते हैं, धीरे धीरे करके हम उनको शांत करते चले जाते हैं। फिर देखें कि हमारी आदत पर हमारा जोर चल सकता है। हमारी बुरी आदत को हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं और अच्छी आदत को हम प्रबल कर सकते हैं। इतना काम मैं सोचता हूं कि कल अपन ने कर लिया है। जिन्होंने नहीं शुरू किया हो मैं मानता हूं कि वे आज से शुरू करेंगे। जो आज भी शुरू नहीं करेंगे मैं इस विश्वास से कि वे कल से शुरू करेंगे अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि यदि हम ये सोच करके कि पता नहीं कोई करेगा कि नहीं करेगा, जब कोई शुरू करेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं हमने तो ये मान लिया है कि हमने शुरू कर दिया है। 0.00001% भी किसी ने शुरू किया है तो वो शुरुआत है। 1% भी नहीं कह रहा, पॉइंट के बाद और जीरो रख के फिर 1 कहें तब भी ठीक। एक मन बन गया है अगर कि कल जो मैंने सुना था मुझे अपने जीवन में शुरू करना, वो दिन कब आएगा मुझे नहीं मालूम। इतना भी अगर आपने कर लिया तो मैं मान रहा हूं कि पॉजिटिव अप्रोच हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाएंगे। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने भीतर की उस कंसंट्रेशन के साथ हमें और कौन से सजेशन अपने को देना है। एक सजेशन ये देना है कि द टोटल एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट ये हम लोग नहीं कर पाते। अपनी आदत को बदलने के लिए एक इच्छा होनी चाहिए, एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए और एक निर्णय करता हूं। ये हम तीन चीजें हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हमारी इच्छा प्रबल है कि नहीं, और हमारे अंदर दृढ़ संकल्प है कि नहीं, और हमारे अंदर निरंतरता है कि तो हम अपनी आदत को बदल देंगे। लेकिन उस आदत को बदलने के लिए हमें एक और सजेशन अपने आप को देना पड़ेगा। वो अगला सजेशन है कि द टोटल एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिजल्ट। जब भी मुझे मैरिट डिमेरिट पुण्य और पाप का जब भी मुझे सुख दुख रूप भय मिले तब मुझे क्या करना है, तब मुझे उसे सिर्फ स्वीकार करना है। अभी क्या होता है, अभी मुझे पुण्य का फल मिलता है तो मैं उसमें हर्ष कर लेता हूं। पुण्य के फल को स्वीकार करना अलग बात है और उसमें हर्षित होना बिल्कुल अलग बात है। अभी तो मैं पुण्य के फल में जब मुझे कोई श्रेय मिलता है, जब मुझे कोई यश ख्याति मिलना शुरू होती है तो मैं उसे कैसे एक्सेप्ट करता हूं, हर्ष के रूप में एक्सेप्ट करता हूं। और जब जब मेरे कोई पाप फलित हो जाए और विपरीतताएं मेरे चारों तरफ आ जाती हैं और विपत्ति में मैं पड़ जाता हूं, तब बहुत डिप्रेस होता हूं, बहुत सॉरो फील करता हूं, बहुत दुखी होता हूं। ये अपने द्वारा किए गए कर्मों के फल को पूरी तरह से स्वीकार करना नहीं कहना, ये तो हर्ष और विषाद करना है। अहंकार और संक्लिश, हम जब अपने फेवरेबल कंडीशन में जीते हैं तब हम अहंकार कर लेते हैं, ये उस फल की स्वीकृति नहीं। फल की स्वीकृति तो पर है कि ठीक है, ये पुण्य का फल है जिसमें मुझे यश मिल रहा है, मुझे ख्याति मिल रही है, लोग जय जयकार कर रहे हैं, मेरा वर्चस्व बढ़ रहा है, मेरी पद प्रतिष्ठा बढ़ रही है, मेरा धन पैसा समृद्धि सब कुछ बढ़ती चली जाए, ठीक है, ये सब पुण्य का फल, इसमें मुझे एक्साइट होने की कोई जरूरत नहीं, इसमें अपने इमोशंस को अनबैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं, अपने मन वचन काय को इनसे अप्रभावित रखना है बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आसान कौन बनाएगा, हम ही। हमने इन सब चीजों को महत्व देकर के अपने लिए मुश्किल कौन महत्व देता है, एक 100 रुपए का नोट नहीं, 1000 रुपए का नोट भी एक छोटे से बच्चे के हाथ में दे दो उसको निवारण के लिए 1000 का नोट है तो वो ऐसे फाड़ेगा जैसे कागज फाड़ता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जैसे वो फाड़ता है वैसे वैसे भीतर कुछ फटने लगता है, वो जो भीतर फटने लगता है उससे मालूम पड़ता है कि हमने क्या मान रखा है, किस चीज को कितना महत्व दे रखा है, किले को हमने महत्व दिया है, वरना कल तक वो भूल में पड़ा हुआ एक पत्थर की तरह टुकड़ा था, हम महत्व देते हैं फिर बाद में उसी से अहंकार और संक्लेश दोनों बनाते हैं। अब हम सिर्फ अपने पुण्य और पाप के फल को सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे, सिर्फ स्वीकार करेंगे, उसमें हम एक्साइट नहीं होंगे, उसमें हम डिप्रेस नहीं होंगे। देखो और मजा इतने नहीं, जितना कुछ भी हमें शेयर मिलता है वो हम आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, उसमें दूसरे का जरा भी हाथ है ऐसा स्वीकार नहीं करते, जो कुछ भी मैंने हासिल किए हैं वो सब मेरी अपनी योग्यता ऐसा मान लेते हैं, और जो कुछ भी जबकि है वो बड़े लोगों की कृपा, लेकिन हम उस समय कृपा कहां मानते हैं, हम तो सिर्फ अपनी योग्यता मान के बैठ जाते हैं, और जब हमारे पाप फलित होते हैं और हमारा काम बिगड़ने लगता है तो हम कहते हैं इसने बिगाड़ा उसने बिगाड़ा, ये इसने ऐसा नहीं किया होता, ये सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं होते, इस तरह हम सारे बाहर के वातावरण को दोषी मानते हैं, लेकिन अपने भीतर अपने आप को दोषी नहीं मान पाते हैं कि मैंने ही शायद ये कर्म पूर्व किए खोटे सहे क्यों नहीं जी, ये जो कर्म मैंने खोटे किए हैं उनको सहन क्यों नहीं बैठे, समता और शांति ये कौन समझाएगा, ये दूसरे के समझाने से कभी समझ में नहीं आएगा भैया, अपना कान पकड़ के अपने आप को खुद जब कंसंट्रेशन हो सुबह शाम बैठो तो अपने को समझाना पड़ेगा कि कहते तो बहुत सहन करो, मैंने कहा था कि तुम पाप मत करो, मैं तो ये कहता हूं कि पाप का फल तुम्हें भोगना पड़ेगी, इस बात की तैयारी रखो फिर करना, कहां कहां मैंने कि पाप कर लो अगर तुम्हारा मन बनता है, लेकिन इसका फल भोगना पड़ेगा उसकी तैयारी है, अगर तैयारी नहीं है तो कृपा करो फिर अपने ऊपर कृपा करो, तो किसी और दूसरे के ऊपर नहीं अपने ऊपर कृपा करो, ऐसा यदि अपने आप को हम सजेशन दें, ऐसा यदि हम अपना मन बना दें, एक दिन बिटते तो नहीं गिरेगा भैया, मेरे कहने से भी नहीं बनने वाला, मैं भी अपनी बात को सुन रहा हूं जो मैं आपसे कह रहा हूं, इतनी जल्दी तो किसी का मन नहीं बनता, लेकिन बनाना पड़ेगा, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, तो किसी दिन मन में ये बात जिस क्षण हमारे हम विपत्तियों से घिर जाएंगे उसी क्षण ये बात याद आ जाएगी कि इन विपत्तियों का कोई आंतरिक कारण है या किससे तुम्हें बाह्य परिस्थितियों को दोषी ठहरा, नहीं इसका आंतरिक कारण मेरी थी तक छिपा होगा, मैंने कुछ ऐसा करा होगा, अब मुझे शांति से सहन करना, ठीक इसी तरह जब मेरे अनुकूल परिस्थितियां बने तब मेरा मन गदगद हो जाए, मैं हर्ष से झूम जाऊं, तब भी मेरे भीतर कोई आकर के कह दे कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो किसी पूर्व संचित तुम्हारे अपने वर्तमान का इसमें कुछ भी नहीं है। तुमने कोई बहुत बढ़िया पहले करा था, आज क्या कर रहे हो पहले ये देख लो, हर्षित मत हो, पहले ये देख लो कि पहले कितने बढ़िया तुम कितने प्यारे थे जिसका कि फल तुम्हें इतना बढ़िया मिला है, उसे याद करो और उससे शिक्षा लो। उन क्षणों में ये याद आ जाए, एक सेठ जी ने अपने यहां पर एक नौकर रखा और वो नौकर क्या देखता था सेठ जी को, बहुत उसका विश्वास था सेठ जी में, बहुत श्रद्धा थी, वो उनके आचरण से बहुत प्रसन्न था वो नौकर। उसने ऐसे सेठ कभी नहीं देखे, बहुत से सेठ देखे होंगे, कैसे सेठ जो अपनी वस्तुओं के गुलाम होते, ऐसे सेठ जो पैसे और धन के गुलाम होते। ध्यान रखना कि दूसरे को अपना पैसा न दे सके वो पैसे को गुलाम ही माना जाएगा और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सम्राट नहीं, जो दे सके वो उसका मालिक और जो दे नहीं सके वो उसका गुलाम। सीधी सी परिभाषा है उसकी, क्या बात, जिन चीजों का हम उपयोग न कर सके उनकी गुलामी करेंगे हम और जिनका उपयोग करते उनके मालिक हम। ऐसा वो सोचता था सेठ जी के बारे में, ये सेठ तो हमने पहली बार, और वाकई में उसने कहा कि इनकी परीक्षा करनी है, कब परीक्षा करेंगे, ये हमेशा प्रसन्न रहते, कभी इनको हमने ज्यादा एक्साइट होते नहीं देखा, कभी डिप्रेस होकर रोते नहीं देखा, ये बड़े शांत स्वस्थ प्रसन्न चित्त बैठे रहते, क्या बात, कभी तो मौका आएगा, कभी इनको भी लॉस होगा तब देखेंगे। और सचमुच ऐसा हुआ कि बात लॉस हो गई और वो दौर का वो आया, सबसे पहले खबर देने की कि मालिक वो भी इतने जहाज जिए जब आराम से भरे हुए बंदरगाह पर खड़े थे और कुछ आने वाले थे, सब आंधी में और समुद्र में डूब गए, बहुत बड़ा घाटा लगा। सेठ जी ने कहा कि इधर पूछो, खाना तैयार हो गया हो तो आए। अरे आपने नहीं सुना, आपके इतने सारे जहाज, देखो तुम अपना काम करो, अभी खाने का समय है, तुम्हारे दुकान जाने का समय में मुझे भी दुकान पे पहुंचना है, क्या ये लगा रखा हुआ है, ये तो हमेशा करता रहता है। अरे कुछ भी नहीं फर्क पड़ा, आश्चर्य, उसने कहा तब तो कोई खुशी का अवसर आएगा, तब तो ये फूले नहीं समाएंगे, देखेंगे अपनी बार। और फिर जितना बड़ा घाटा लगा था उससे कई गुना बेनिफिट हो गया, उससे कई गुना प्रॉफिट हो गया, तब जाकर के सोचना भी कभी उसको तो आशा थी कि सेठ जी कहेंगे कि ये ले लो हीरे की माला, तुमने कितनी बढ़िया खबर सुनाई है और बना बजाओ तुम्हें और क्या चाहिए, और जाकर के भीतर कहो खाली सजाओ बढ़िया भगवान बनना चाहिए आज। लेकिन सेठ जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, सेठ जी ने यही कहा कि तुमने अपना भोजन कर लिया, तो अपना भोजन कर लो, आज का काम हमें आज ही निपटा लेना चाहिए, कल तक नहीं छोड़ना चाहिए। अरे कोई एक्साइटमेंट नहीं, डेली रूटीन में जैसा चल रहा है वैसे ही, बहुत मुश्किल है लेकिन हमें इस चीज को आसान बनाना, टोटल एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिजल्ट, जो कुछ भी मेरे सामने पुण्य और पाप का फल आता है, जिसको चैनला में दौलत राम जी से पूछो तो कहते हैं पाप पुण्य फल माई, पुण्य पाप फल माई हरक दिखो, ये कौन समझाएगा, ये हमें अभ्यास करना है। छोटे छोटे से अवसर आएंगे, हम उनमें शांत रहने का अभ्यास करेंगे, जब कोई हमें कोई बहुत बड़ी खुश कर भी देगा हम आसानी से उसे सहन कर लेंगे। सुख को भी सहन करना सीखना पड़ेगा, अभी तो दुख को सहन करने की सलाह दी जाती लेकिन सुख को सहन करना उसमें जरा भी एक्साइट नहीं, ये भी सीखना, ये अगर हमने सीख लिया तो दुख को सहन करना हम आसानी से सीख लेंगे। हम उल्टा काम शुरू करते हैं, सुख को सहन करना तो सहन तो बहुत लोग कर, दुख को सहन करना तो बहुत कर लेते हैं, पशु और ये वृक्ष कितने ही काटो पीटो जलाओ मारो कुछ भी करो बेटा।